पृष्ठ संख्या 165। द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ एशियाई देश एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। एशियाई देश जापानी शासन के अधीन आने वाले सभी एशियाई देशों में प्रतिरोध आंदोलन खड़े हुए। इनमें से सबसे प्रबल था चीन का प्रतिरोध युद्ध, जो द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने से पहले से ही चल रहा था। ऊपर हमने सियान की जिस घटना का उल्लेख किया है, उसके बाद साम्यवादियों तथा गोमिंदांग ने अपनी आपसी कलह के मुकाबले जापानियों के प्रतिरोध को तहजीह देना शुरू कर दिया था। यद्यपि दोनों पक्ष इस प्रयत्न में कभी भी मन से एक साथ नहीं हुए, अन्य देशों में जहां ब्रिटिश, डच या फ्रांसीसी शासन का स्थान जापानी हुकूमत ने ले लिया था, पहले से ही सक्रिय उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने जापानी कब्जे के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का संगठन किया। जापानी कब्जे के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध में तीव्रता आने का कारण इन देशों में जापानियों द्वारा किया गया अत्याचार भी था। फिलीपींस, हिंद चीन, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, वर्मा, मलाया आदि लगभग सभी एशियाई देशों में जापानियों के खिलाफ चलने वाले प्रतिरोध में साम्यवादियों ने सामान्यतः प्रमुख भूमिका निभाई। इसका एकमात्र अपवाद थाईलैंड था। 1941 में वियतनामी साम्यवादियों ने होची मिन्ह के नेतृत्व में वियतनाम लीग की स्थापना की, जिसने वीसी फ्रांस के समर्थकों तथा जापानियों के खिलाफ संघर्ष किया। 2 सितंबर 1945 को लीग ने वियतनाम के लोकतंत्र की गणतंत्र बन जाने की घोषणा की। वर्मा में आंग सान के नेतृत्व में फांसीवाद विरोधी जनमुक्ति संघ एंटी फासिस्ट पीपल्स फ्रीडम लीग का गठन किया गया। फिलीपींस में जापान विरोधी जनसेना एंटी जापानीज पीपल्स आर्मी ने जापानियों के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाइयों का संगठन किया। इन तमाम आंदोलनों ने एशिया में जापानी साम्राज्यवाद की अंतिम पराजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन देशों में जापान ने यूरोपीय साम्राज्यवादी शासन को खत्म करके अपना शासन स्थापित किया था। फ्रांसीसी उपनिवेशों में उन्होंने वीसी फ्रांस का औपचारिक नियंत्रण रहने दिया था। जिन देशों पर जापान ने कब्जा कर लिया था, वहाँ की जनता ने जापान को मुक्ति दिलाने वाला देश कभी नहीं समझा। भारत जापानी कब्जे से बच गया था। यहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने यूरोप पर नाजी कब्जे और एशिया में जापानी अधिकार के खिलाफ चलने वाले जनसंघर्ष को पूरा अपना समर्थन दिया। मित्र राष्ट्रों के युद्ध लक्ष्य। युद्ध के दौरान सामान्य रणनीतियों पर विचार करने और जिन लक्ष्यों के लिए मित्र राष्ट्र लड़ रहे थे, उनके संबंध में सहमति बनाने के लिए अनेक बैठकें हुई और सम्मेलन आयोजित किए गए। इन बैठकों और सम्मेलनों में से कुछ भी कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन सर्वाधिक महत्व के फैसले मुख्य मित्र शक्तियों के नेताओं, ब्रिटेन के चर्चिल, रूस के स्टालिन और संयुक्त राज्य के रूजवेल्ट तथा 12 अप्रैल को रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अगले राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा किए गए। चर्चिल और रूजवेल्ट द्वारा जारी किए गए अटलांटिक घोषणा पत्र, अटलांटिक चार्टर का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इस घोषणा पत्र के जारी किए जाने के शीघ्र बाद सोवियत संघ भी इसका पक्षधर हो गया। 1 जनवरी 1942 को 26 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा के साथ ही फांसीवाद विरोधी मित्र गठबंधन अलाइंड कोएलिएशन विधिवत कायम हो गया, यद्यपि उसकी वास्तविक रचना पहले ही हो चुकी थी। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले देशों ने प्रतिज्ञा की कि वे सबके सामान्य शत्रुओं को पराजित करने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे और इस उद्देश्य से एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। वे इस बात पर भी सहमत हो गए कि वे शत्रु देशों के साथ अलग से कोई वार्ता नहीं करेंगे और ना उनसे अलग से युद्ध विराम या शांति संधि करेंगे। एक महत्वपूर्ण घटना जनवरी 1943 में हुई। यह थी अटलांटिक के मोरक्को तट पर कासा ब्लांका नामक बंदरगाह में रूजवेल्ट और चर्चिल की मुलाकात। ब्रिटेन और संयुक्त राज्य के बीच फांसीवादी शक्तियों के समक्ष रखे जाने वाले शांति प्रस्तावों की शर्तों के बारे में कुछ मतभेद थे। रूजवेल्ट ने फांसीवादी ताकतों से बिना शर्त समर्पण की मांग करके इन विवादों का अंत कर दिया। उसके बाद सभी मित्र राष्ट्रों ने, या अब जिन्हें संयुक्त राष्ट्र कहा जाता था, उन सभी ने यही स्थिति अपना ली। 19 से 30 अक्टूबर 1943 तक मॉस्को में हुए ब्रिटेन, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक से फांसीवाद विरोध गठबंधन भी पुख्ता हुआ। इस बैठक में दूसरा मोर्चा खोलने के प्रश्न पर विचार किया गया और इटली तथा ऑस्ट्रिया के संबंध में कुछ घोषणाएं स्वीकार की गई। यूरोपीय राज्यों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों पर विचार करने के लिए सलाहकार समितियां स्थापित करने का निर्णय किया गया। जिन प्रश्नों का निपटारा करना था, उनमें से एक का संबंध फांसीवादी शक्तियों तथा उनके मित्र देशों के समर्पण को स्वीकार करने की शर्तों से भी था। इस बैठक में एक चतुर राष्ट्रीय घोषणा, चौथा राष्ट्र चीन था, भी जारी की गई, जिसमें यथासंभव शीघ्र से शीघ्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए एक ऐसा सामान्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने की आवश्यकता बताई गई, जिसका आधार सभी राष्ट्रों के संप्रभुता युक्त समानता हो तथा जिसकी सदस्यता का द्वार छोटे बड़े सभी राष्ट्रों के लिए खुला हुआ हो। इस घोषणा को संयुक्त राष्ट्र घोषणा, यूनाइटेड नेशंस चार्टर का आरंभ कहा जा सकता है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अगले शिखर सम्मेलन की तैयारी करना था। 1 दिसंबर 1943 को ब्रिटेन, संयुक्त राज्य तथा चीन के हस्ताक्षरों से केरो घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र का संबंध मुख्य रूप से जापान तथा उसके अधिकृत देशों से था। उसमें जापान से कहा गया था कि वह बिना शर्त आत्मसमर्पण करे और 1894 के बाद से उसने जो भी प्रदेश जीते हैं उन सबको वापस कर दे। आश्चर्य की बात यह है कि इस घोषणा पत्र में उन यूरोपीय उपनिवेशों के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के सिद्धांत का कोई उल्लेख नहीं किया गया जिन पर जापान ने कब्जा कर रखा था। तेहरान सम्मेलन, तीनों प्रमुख मित्र राष्ट्रों का पहला शिखर सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान में 28 नवंबर से 2 दिसंबर 1943 में हुआ। सम्मेलन में चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट शामिल हुए। इस समय तक सोवियत संघ यूरोप की लड़ाई में निर्णायक शक्ति के रूप में उभर चुका था। इस आंदोलन में चर्चिल और रूजवेल्ट मई 1944 में फ्रांस में 10 लाख सैनिक उतारने, अर्थात चीर प्रतिरक्षित दूसरा मोर्चा खोलने पर राजी हो गए। सोवियत संघ इस बात पर सहमत हो गया कि जर्मनी के पराजित हो जाने पर वह जापान के खिलाफ युद्ध में शामिल हो जाएगा। इस सम्मेलन में पोलैंड की युद्धोत्तर सीमाओं के बारे में भी विचार किया गया और उससे संबंधित शर्तों के बारे में मोटे तौर पर सहमति कायम हो गई। पोलैंड की लंदन स्थित प्रवासी सरकार ने उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। इस पर सोवियत समर्थन से पोलैंड में एक पोलिश राष्ट्रीय परिषद, पोलिश नेशनल काउंसिल स्थापित कर दी गई, जिसमें साम्यवादियों का बोलबाला था। इस तरह पोलैंड वालों का प्रतिरोध मोर्चा दो फाड़ हो गया और सोवियत सरकार तथा पोलैंड की प्रवासी सरकार के बीच दरार पड़ गई। डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन, ब्रिटेन, सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन 21 अगस्त से 28 सितंबर 1944 तक अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के निकट डम्बर्टन ओक्स नामक स्थान में हुआ। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के गठन पर विचार करना था। बाद में इस सम्मेलन में चीन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र का मसविदा तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्रों की एक बैठक मई जून 1945 में सन फ्रांसिस्को में आयोजित की जाने वाली थी। याल्टा सम्मेलन 1945 के आरंभ में जब जर्मनी की पराजय के आसार दिखाई देने लगे थे, चर्चिल, स्टालिन और रूजवेल्ट का एक और सम्मेलन सोवियत संघ के याल्टा नामक स्थान में हुआ। यह सम्मेलन 4 से 11 फरवरी 1945 तक चला। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। जर्मनी से बिना शर्त आत्मसमर्पण कराना, तीनों देशों का सामान्य लक्ष्य घोषित किया गया। जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद उसके भविष्य के संबंध में भी तीनों में समझौता हुआ। बैठक में घोषणा की गई कि तीनों देशों का अटल उद्देश्य जर्मनी के सैन्यवाद तथा नाजीवाद को मिटाना और ऐसी व्यवस्था करना जिससे जर्मनी भविष्य में फिर कभी विश्व शांति में बाधा ना डाल सके। तय किया गया कि जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद उसे 4 क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, जिनमें से एक क्षेत्र ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य तथा सोवियत संघ के अधीन रहेगा। पोलैंड की सीमाओं के संबंध में यह फैसला हुआ कि लंदन स्थित गैर साम्यवादी पोल लोग भी पोलैंड की कामचलाऊ सरकार में शामिल किए जाएंगे और वहां यथासंभव शीघ्र ही स्वतंत्र चुनाव कराए जाएंगे। मुक्त कराए गए यूरोप संबंधित एक घोषणा में तीनों देशों ने वचन दिया कि वे यूरोप के देशों को लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित करने में सहायता देंगे। सोवियत संघ जर्मनी की पराजय के 3 महीने के अंदर जापान के विरुद्ध युद्ध में उतरने पर राजी हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के संबंध में भी महत्वपूर्ण फैसले किए गए। जो भी राज्य जर्मनी के खिलाफ युद्धरत थे, उन सब के लिए 1 मार्च 1945 को संघ की सहायता के द्वार खोल देने का निश्चय किया गया, ताकि वे संघ के घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने के लिए बुलाए गए सन फ्रांसिस्को के सम्मेलन में भाग ले सके। इस सम्मेलन की तारीख 25 अप्रैल 1945 तय की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के गठन के बारे में और साथ ही इस विषय में भी सहमति हो गई कि कौन से राज्य इस परिषद के सदस्य होंगे। इस सिद्धांत पर भी रजामंदी हो गई कि शांति और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों में फैसले का आधार सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों का मतैक्य होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र याल्टा की बैठक के निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन ने जर्मनी के आत्मसमर्पण के पहले से ही संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर विचार करना आरंभ कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण के पूर्व 26 जून को 50 राष्ट्रों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हो गया। इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य तथा गठन की परिभाषा की गई। यह निम्नलिखित शब्दों से आरंभ होता है। संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रिकों ने संकल्प किया कि हम भावी पीढ़ियों को युद्ध अभिशाप से उस अभिशाप से बचाएंगे जिसने स्वयं हमारे जीवन काल में मानव जाति को असीम दुख दिया है और मूलभूत मानवाधिकारों में मनुष्य की गरिमा तथा सामर्थ्य में स्त्रियों तथा पुरुषों एवं छोटे तथा बड़े राष्ट्रों के समान अधिकारों में अपनी आस्था का पुनः इजहार करते हैं और हम ऐसी स्थितियां उत्पन्न करेंगे जिनमें न्याय तथा संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अन्य स्रोतों से प्रतिफलित दायित्वों का पालन हो और हम अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता के वातावरण में सामाजिक प्रगति तथा बेहतर जीवन स्तर के लिए कार्य करेंगे और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सही सुनता का आचरण करेंगे और एक दूसरे के साथ नेक पड़ोसियों की तरह रहेंगे और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बरकरार रखने के लिए अपनी अपनी शक्ति को एकजुट करेंगे और सिद्धांतों की स्वीकृति तथा उचित उपायों की स्थापना के द्वारा ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे सैन्य बल का उपयोग किया जा सके तो सिर्फ सबके हित के लिए और हम सभी राष्ट्रों की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्रों का उपयोग करेंगे। और हमने निश्चय किया कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम संयुक्त रूप से प्रयत्न करेंगे और तदनुसार हमारी सरकारें संयुक्त राष्ट्रों के इस घोषणा पत्र पर सहमत हुई है और वे एतद् द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण करती है जिसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों को घोषणा पत्र के प्रथम अनुच्छेद में निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। एक, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को कायम रखना और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शांति पर कोई खतरा न आने देना और खतरा आने पर उसे दूर करने के लिए एवं अतिक्रमण की कार्रवाइयों या शांति भंग करने वाले दूसरी कार्रवाइयों को दबाने के लिए कारगर सामूहिक कदम उठाना और शांतिपूर्ण उपायों से तथा न्यायपूर्ण रीति से एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय विवादों तथा शांति भंग करने की आशंका से आपूरित परिस्थितियों का निदान करना और निपटारा करना। दूसरा, राष्ट्रों के समान अधिकारों तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना तथा विश्व शांति को सुदृढ़ बनाने के लिए अन्य आवश्यक उपाय करना। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या मानवीय प्रकृति की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए तथा नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मानव अधिकारों का एवं मौलिक स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। चार, इन सर्वमान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राष्ट्रों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों में तालमेल बैठाना। घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन तथा उसके मुख्य अंगों को भी परिभाषित किया गया। इसके मुख्य अंग इस प्रकार थे। एक, सभी सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी एक आम सभा, जनरल असेंबली। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन और फ्रांस, इन पांच अस्थायी प्रतिनिधियों तथा 2 साल के लिए आम सभा द्वारा चुने गए 6, बाद में 10, सोवियत संघ के समाप्त होने के बाद रूस को अस्थायी सदस्य मान लिया, राज्यों से बनी एक सुरक्षा परिषद। तीसरा, आम सभा द्वारा चुने गए 18, बाद में 27 सदस्यों से बनी एक आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। चार, एक न्याय परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसमें न्याय क्षेत्रों का प्रशासन चलाने वाले राज्यों तथा अन्य राज्यों के प्रतिनिधि समान संख्या में शामिल किए जाने वाले थे। पांच, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और 6, एक सचिवालय। घोषणा पत्र में गैर स्वशासी क्षेत्रों के संबंध में भी एक घोषणा शामिल की गई थी जिसमें इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया था कि इन क्षेत्रों के निवासियों के हित सर्वोपरि हैं और उन पर शासन करने वालों का यह कर्तव्य है कि वह उनमें स्वशासन का विकास करे, वहाँ की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा ध्यान दे और उनकी राजनीतिक संस्थाओं के क्रमिक विकास में सहायता दे। घोषणा पत्र में आयोगों और विशेषज्ञता युक्त एजेंसियों तथा संस्थाओं की स्थापना की भी व्यवस्था की गई थी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन स्थापित 2 महत्वपूर्ण विशेषज्ञता युक्त एजेंसियों ने, एक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, दूसरा, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना फांसीवादी देशों के खिलाफ युद्ध में भाग लेने वाले देशों की एक महत्वपूर्ण और अस्थायी उपलब्धि है। पोट्सडम सम्मेलन, जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 3 अगुआ मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के पोट्सडम नामक स्थान में एक सम्मेलन किया। यह सम्मेलन 17 जुलाई से 8 अगस्त 1945 तक चला और इसमें चर्चिल, स्टालिन तथा हैरी एस ट्रूमेन रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद संयुक्त राज्य का नया राष्ट्रपति ने भाग लिया। 28 जुलाई से इसमें चर्चिल के स्थान पर क्लेमेंट एटली शामिल हुआ, जो लेबर पार्टी के सत्तारूढ़ होने पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। पोट्सडम सम्मेलन का मुख्य विचारणीय विषय था जर्मनी। इस सम्मेलन द्वारा जारी की गई घोषणा में कहा गया कि जर्मन सैन्यवाद तथा नाजीवाद का समूल नाश कर दिया जाएगा तथा मित्र राष्ट्र अभी और भविष्य में आपसी सहमति से ऐसे अन्य आवश्यक उपाय करेंगे जिनको जर्मनी आगे फिर कभी अपने पड़ोसी देशों या विश्व शांति के लिए खतरा ना बन पाए। इस सम्मेलन में पोलैंड की पश्चिमी सीमा के बारे में रजामंदी हुई और तय किया गया कि पूर्व प्रशा का उत्तरी हिस्सा सोवियत संघ को तथा दक्षिणी हिस्सा पोलैंड को सौंप दिया जाए। फांसीवादी संगठनों पर निषेध लगाने, जर्मनी की सैनिक शक्ति को खत्म करने, शस्त्र अस्त्रों के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पादक संघों कार्टेल तथा नियंत्रक उद्योगों को समाप्त करके जर्मन अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना करने, जर्मनी द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा जर्मनी के चार अधिकृत क्षेत्रों में विभाजन पर भी सभी पक्ष सहमत हो गए। यह भी तय किया गया कि नाजी युद्ध अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाए। बाद में यह मुकदमा जर्मनी के न्यूरंगबर्ग नामक स्थान में चलाया गया। कार्यवाही लगभग 1 साल तक जारी रही। 12 आरोपियों को मृत्यु दंड दिया गया। कुछ अन्य लोगों को, जिनमें कई जर्मन उद्योगपति भी शामिल थे, आजीवन कारावास का दंड दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इसमें 5 करोड़ से अधिक मानव जीवन की क्षति हुई थी। अनुमान लगाया गया कि इस युद्ध में कुल 140 अर्थात 140 खरब डॉलर का व्यय हुआ। तथापि विनाश के आंकड़ों से इस महाविपत्ति की विकरालता का सही बोध नहीं हो सकता।